जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री पुरुषोत्तम अधिक मास के अंतिम आठ दिनों में भागवत कथा के चौथे दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम और भक्ति इनकी महिमा का वर्णन पिछले तीन दिनों से हम करते आए हैं। कल शाम भीष्म देव के बारे में भी संक्षेप में एक चर्चा हुई। कल की कथा का पुनः स्मरण करते हैं। नारद जी ने भक्ति देवी को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए। वास्तव में ये सारे उपदेश हम सब के लिए है। नारद जी बताते हैं कि सत्य त्रेता और द्वापर युगों में ज्ञान और वैराग्य ये दोनों पथ बहुत लाभदायक हुआ करते थे और मुक्ति प्रदान करने में समर्थ थे, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में केवल भक्ति का पथ ही हमें जीवन की समसिद्धि को दिला सकता है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। नारद जी को चतुष कुमारों ने भी बताया कि भक्ति प्राप्त करने का सबसे सुलभ उपाय है श्रवण और कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र लीलाओं का, गुणों का, उपदेशों का, नामों का कीर्तन गान यदि हम करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहेंगे, तो शीघ्र ही
हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जब चतुष्कुमारों ने भागवत कथा की गंगा के तट पे हरिद्वार के पास, तो भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहां पर आई, प्रकट हो गई और ज्ञान और वैराग्य भी पुनः जागृत हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा के कारण भक्ति देवी वहां श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भक्ति देवी ऐसा कीर्तन करने लगी, ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये तो आप सबने कई बार सुना होगा, परंतु इसका उल्लेख कहाँ होता है? ये इस कथा से स्पष्ट होता है। पद्म पुराण में भागवत महात्म्य के अंतर्गत भक्ति देवी स्वयं कीर्तन करती हैं। इस प्रकार से भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य भी तंदुरुस्त हो गए और ऐसे नारद जी सब जगह जाके श्रीमद् भागवत और भक्ति का प्रचार करने लगे। वैसे नारद जी और श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार भक्ति के सिवाय दूसरा कोई पथ वास्तविक फल प्रदान नहीं कर सकता है। विशेष करके दो पथ हैं, अन्य कर्म और ज्ञान के पथ। अब जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, कर्म और कर्म के पथ में अंतर है, ज्ञान और ज्ञान के पथ में अंतर है। जब हम कहते हैं कि कोई कर्म के पथ पे चल रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि वो सकाम कर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपने कर्म करते हैं कर्मों का फल भोगने के लिए। इसलिए ऐसे पथ में आध्यात्मिकता कम होती है। सकाम कर्मी कहलाते हैं ऐसे लोग। कर्म का संबंध जहां तक है, ये एक साधारण शब्द है जिसका अर्थ है कोई भी कार्य करना। पुण्य कार्य हो सकते हैं, पाप कार्य हो सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य या भक्ति के कार्य हो सकते हैं। तो भक्ति में बहुत सारे कार्य होते हैं। बैठ के भगवान की कथा सुनना ये भी एक कार्य होता है, ये भी एक कर्म है, क्योंकि इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, मन केंद्रित करना पड़ता है। परंतु कई लोग सोचते हैं कि भक्ति में कोई कार्य नहीं होता, भक्ति केवल भावुक लोगों के लिए है और जो सक्रिय लोग हैं उनके लिए कर्म का पथ है, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए भक्ति उन ज्ञान का पथ है। परंतु ये सारी गलत धारणाएं हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति कर्म के फल के लिए प्रयास करता है तो फिर वो कर्म के पथ में चल रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो भक्ति के पथ में भी हम कर्म करते हैं परंतु केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भक्त लोग मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की आरती उतारते हैं, भोग चढ़ाते हैं, भोग पकाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस कथा के लिए भक्तों ने कितनी मेहनत करके तरह तरह की व्यवस्था की है यहाँ पर। तो भक्ति के पथ में भी बहुत सारे कर्म होते हैं परंतु ये कर्म अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनका कोई भौतिक फल नहीं होता और न भक्त भक्ति के द्वारा कोई भौतिक फल चाहता है। परंतु कर्म के पथ की बात जब हम करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि इसमें व्यक्ति का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करने का नहीं होता है, वो केवल संसार का भोग करना चाहता है या संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत यदि रतिम श्रम एव एवहि केवलम्। यदि हमने हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विभिन्न कर्तव्यों को बड़े अच्छे ढंग से निभाया, पालन किया, यदि हम श्री कृष्ण के भक्त नहीं हुए तो ये सारा जो हमारा प्रयास है वो श्रम एव ही केवलम अर्थात व्यर्थ है। केवल कर्म करना और भगवान की भक्ति नहीं करना ये लाभदायक नहीं है, व्यर्थ है। समाज में ये बहुत गलत धारणा है कि बस भगवद गीता का सार है कर्म करते रहो, ऐसा नहीं कहते हैं भगवान। कर्म करते रहना है हाँ, परंतु किसके लिए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किन की प्रसन्नता के लिए। जब हम भक्ति के पथ में चलते हैं हम हमारे सारे कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, इसलिए वो बहुत मीठे फल प्रदान करते हैं। परंतु भगवान की भक्ति को छोड़कर यदि हम कोई साधारण कर्म करते हैं तो फिर वो निष्फल है आध्यात्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो। श्रीमद् भागवत में नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए जो ऋषि मुनि थे वो बहुत प्रसन्न हुए जब सूत गोस्वामी वहां पर आए और उनके निवेदन पर उन्होंने श्री कृष्ण की कथाएं कहना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण की कथाओं को सुनकर इनका मन इतना प्रसन्न हुआ कि वो कहने लगे, कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूमा धूम्रात्मनाम भवान अपाययति गोविंदः पाद पद्मा सवम मधु। कि हे सूत गोस्वामी पाद, हम यहां अनेक वर्षों से लगे हुए थे तरह तरह के यज्ञ संपन्न करने में, भले हम दुनिया के हित के लिए कर रहे थे परंतु यज्ञ संपन्न करते करते हमने अनुभव किया कि कोई लाभ हमें नहीं हुआ। यदि लाभ कोई हुआ, यदि कोई परिणाम इसका हुआ तो केवल इतना कि हमारे मुख जो हैं वो इस अग्नि के धुएं से काले हो गए हैं, बस इतना ही परिणाम हुआ है। धूमा धूम्रात्मनाम भवान, इसलिए अब हम इतने संतुष्ट हो गए हैं कि आप श्री कृष्ण की कथाओं को कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु, अभी हम पी रहे हैं, अपाययति आप पिला रहे हैं हमको, क्या पिला रहे हैं, आसव एक तरह का रसायन होता है, जैसे आयुर्वेद में भी आसव होते हैं, रसायन होते हैं, तो ये आसव है, एक मधु है, एक प्रकार का शहद है, बहुत मीठा है। तो किस तरह का शहद है ये? गोविंद पाद पद्म, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो शहद है या मधु है या अमृत है, इसका पान आप इन कथाओं के द्वारा हमें करा रहे हैं। इसलिए हम अब पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं, परंतु पहले हम संतुष्ट नहीं थे। इसलिए कर्मकांड आदि करने से हमारे समय, मूल्यवान मनुष्य समय को हम गंवाते हैं। हिंदी में एक कहावत है, भैंस के सामने बीन बजाना। इसका मतलब है कि कोई ऐसे कार्य करना जो निष्फल है, जिसका कोई फल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब कोई व्यक्ति वीणा बजाने में बहुत प्रवीण होता है, जब ऐसे लोगों के संग में वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है जो कि शास्त्रीय संगीत को बहुत जानते हैं, पसंद करते हैं, रसिक संगीत के प्रेमी हैं, तब वो बहुत संतुष्ट होता है। तो उसका वीणा बजाना वहां बहुत लाभदायक होता है सबके लिए, सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु एक भैंस के सामने जाके वो वही बजाए, क्या लाभ? क्या भैंस कुछ समझेगा? केवल व्यर्थ होगा वही काम। इसे अरण्य रोदन भी कहते हैं। यदि हम जाएं जंगल के भीतर, घने जंगल के बीच में जाएं और जोर से चिल्लाएं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो हमारी पुकार को कौन सुनेगा? कौन है वहां पे घने जंगल में हमें आके बचाने के लिए? हमारा चिल्लाना व्यर्थ रहेगा। मुकुंद माला स्तोत्र में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त राजा कुलशेखर बताते हैं, आम्नाय अभ्यसनानि अरण्य रुदितम। यदि कोई व्यक्ति वेदों का पाठ करता है जोर जोर से, परंतु भगवान का भक्त नहीं है, केवल वेदों के पाठ में लगा हुआ है, तो ये अरण्य रुदितम है। मानो ऐसा कि वन में जाके चिल्लाना निष्फल है ऐसा कार्य। तो भक्तिहीन वेदों का पाठ करना, इसमें कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से वेद व्रतानि अन्वहम मेदश्छेद फलानि। यदि हम तरह तरह के तपस्या करते हैं, वेद व्रतानि अन्वहम, प्रतिदिन हम वेदों में बताए हुए व्रतों का पालन करते हैं, परंतु यदि हमारे अंदर भक्ति भाव नहीं है, मेदश्छेद फलानि, तो इसका फल क्या होगा? केवल हमारा वजन कम हो जाएगा बस। हम उपवास आदि रखते हैं, अलग अलग दिनों में लोग अलग अलग कारणों के लिए उपवास रखते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना न होने के कारण ऐसे उपवास रखना निष्फल है। वजन कम कराने में लाभदायक हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक लाभ अधिक नहीं होता है। राजा कुलशेखर आगे कहते हैं, पूर्त विधयः सर्वं हुतं भस्मनि। तरह तरह के पुण्य कार्यों का वर्णन है कर्मकांड शास्त्रों में। यदि हम अच्छी तरह से उन कार्यों को करते हैं, परंतु भगवान के भक्त नहीं है, तो फिर हुतं भस्मनि। जैसे मानिए कि अग्नि में आहुति देने के बजाय हम राख में या भस्म में आहुति दे रहे हैं, स्वाहा कह रहे हैं। जब राख में आहुति देते हैं तो क्या उसका कुछ फल मिल सकता है? जब कोई होम या अग्निहोत्र का आयोजन किया जाता है और फिर हम अग्नि में मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कोई आहुति अर्पण करते हैं, तो फिर उसका कुछ फल तो हो सकता है। परंतु केवल राख में या भस्म में हम आहुति अर्पण करें तो यह निष्फल रहेगा। ठीक उसी प्रकार से सारे ये तथाकथित पुण्य कर्म भी भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निष्फल है। तीर्थानाम अवगाहनानी च गजस्नानम। तीर्थानाम अवगाहनानी, जब हम तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं और भगवान की भक्ति नहीं चाहते हैं ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा से, केवल हमारे पापों को नष्ट करने के लिए जाते हैं ताकि हम पुनः वापस आके पाप करते रहें और पापों का कष्ट नहीं हो हमें, तो फिर ये भी गज स्नानम, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, परीक्षित राजा भी इसी बात को कहते हैं श्रीमद् भागवत में, कुंजर शौच एक हाथी का स्नान। राजा कुलशेखर बताते हैं, विना यत पाद द्वंद्व अंभोरुह संस्मृतिम विजयते देवः स नारायणः। ये चार चीज जब हम करते हैं बिना श्री नारायण या श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण से, तब ये सारे चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। तो इसलिए कर्म के पथ और कर्म, इसमें बहुत अंतर है। और भक्ति में भी हम तरह तरह के कर्म करते हैं जिनको अकर्म कहते हैं, और यही श्रीमद् भागवत में बताया गया है। जितने भी बड़े बड़े भक्तों का वर्णन है वो भी सब ऐसे तरह तरह के कार्य करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। श्रवण कीर्तन करना ये भी एक कार्य है, ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना ये भी एक कार्य है। तो जैसे कर्म और कर्म के पथ में अंतर है, वैसे ज्ञान और ज्ञान के पथ में भी अंतर है। भक्ति के मार्ग में भी हम ज्ञान का उपयोग करते हैं, अवश्य करते हैं। सर्वप्रथम भगवत गीता से हम जानना चाहते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और आगे चलते चलते ये ज्ञान हो जाता है कि परम सत्य या भगवान कौन है, और आगे चलते चलते बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं गीता और भागवत में। वो ज्ञान जो कि हमें हमारे भक्ति के लिए पौष्टिक होता है, लाभदायक होता है, वो ज्ञान भक्तों के लिए आवश्यक है। जो ज्ञान भगवान के दिव्य नामों के बारे में, धाम के बारे में, भक्तों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, यश आदि के बारे में, उनके सौंदर्य आदि के बारे में हमें बतलाता है, जानकारी देता है, ऐसा ज्ञान तो बहुत आवश्यक है। न केवल लाभदायक है परंतु आवश्यक है, अनिवार्य है भक्तों के लिए। परंतु जब हम ज्ञान के पथ की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो ज्ञान जो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि परम सत्य केवल एक निराकार ज्योति है जिसमें लीन होना हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए हम तरह तरह के तपस्या करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, संस्कृत पाठ करके शास्त्रों का विश्लेषण करते हैं, परंतु निष्कर्ष ये है कि हम भगवान में लीन होना चाहते हैं। भगवत सेवा जो कि भक्तों की निरंतर इच्छा रहती है वो नहीं है, इसलिए भक्त ऐसी कामना अपने हृदय में नहीं रखते हैं। वैसे ब्रह्मा जी भी भागवत में प्रार्थना करते हैं, येन्ये रविनिदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यतो नाद्रित युष्मदंघ्रयः। वो कहते हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान के पथ को स्वीकार करते हैं, अपने आप को मुक्त समझ लेते हैं, परंतु उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होने के कारण वो परम पद को प्राप्त नहीं करते हैं, यद्यपि वो सोचते हैं कि हमने परम पद की प्राप्ति कर ली है, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है, आपके व्यक्तित्व को ही नकारा है, आपके रूप को, आपके आकार को, आपके व्यक्तित्व को नहीं माना है, ये अपराध है आपके चरणों में। इसलिए बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद भी वो पुनः भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो ये है ज्ञान योग का फल या ज्ञान के पथ का फल, परंतु भक्ति का फल कितना रसमय है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कि हे सूत गोस्वामी, वैसे आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, आप हमें कृष्ण कथा सुना रहे हैं, इस अमृत का पान करा रहे हैं और हम लोग थक नहीं रहे हैं। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे श्रृण्विताम, आपके मुख से जब हम श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, हम थक नहीं जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम थक गए होंगे, नींद आ रही होगी, भूख और प्यास के कारण कोई कष्ट हो रहा होगा। नहीं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है आपके मुखारविंद से कृष्ण का गुणगान सुनने पर। तत् श्रृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। जो ऐसे रसज्ञ हैं, जो रसिक भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करने में रुचि लेते हैं, वो ऐसी कथाओं में पद पद पर उनका स्वाद बढ़ते रहता है। स्वादु स्वादु पदे पदे। तो हमें चाहिए कि हम भी ऐसे नैमिषारण्य के साधुओं के पद चिन्हों में चलें और इस भक्ति रस का हम आस्वादन करें। यही नारद मुनि बताना चाहते हैं, यही श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। जब हम सिद्धांत को सही तरह से जान लेते हैं तो फिर लीला भगवान की सुनने में और भी अधिक आनंद आता है। वैसे भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं कि हम बिना कुछ सिद्धांत जाने हुए भी सुनेंगे तो बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु यदि इन लीलाओं को हमें सही तरह से समझना है, रस की वृद्धि यदि हमें करानी है, तो अवश्य हमें सिद्धांतों को भी समझना चाहिए, दर्शन भी समझ लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि श्रीमद् भागवत केवल रस ही होने के कारण आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। जैसे गुलाब जामुन है, मान लीजिए आप इस तरफ से खाइए या उस तरफ से खाइए, मीठा ही लगेगा, क्योंकि गुलाब जामुन हर तरह से देखा जाए तो मीठा है। तो श्रीमद् भागवत भी ऐसे ही है। आप शुरू पहले स्कंद को पढ़िए, चौथे को पढ़िए, आठवें को पढ़िए, दसवें को पढ़िए, बारहवें को पढ़िए, तो मीठा ही है। फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा कि इसके लिए एक पद्धति होती है कि प्रथम स्कंध से हम शुरू करते हैं और ऐसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि स्कंधों को पार करते करते फिर हम अंततः दशम स्कंध तक पहुंच जाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की वृंदावन मथुरा और द्वारका की लीलाओं का वर्णन है। तो प्रभुपाद कहते हैं वैसे दशम स्कंध भी पढ़ा जा सकता है, परंतु लोगों को सिद्धांतों के बारे में ज्ञान न होने के कारण ऐसी पूरी संभावना रहती है कि वो श्री कृष्ण की लीलाओं को गलत समझ लें। और ऐसे ही होता है, कई लोग सीधे रासलीला सुनने के लिए जाते हैं जबको उनको उन्हें मूल सिद्धांत पता नहीं होते हैं। परंतु जब हम सिद्धांत या दर्शन को भी अच्छी तरह से जानते हैं या समझ लेते हैं तो लीलाएं बहुत रसमय हो जाती हैं। किस तरह के सिद्धांत या दर्शन की बात कर रहे हैं? जिन सिद्धांतों का वर्णन अब हम कर चुके हैं, कल भी और आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे सिद्धांतों को समझने के बाद वास्तव में हम किसी भी चीज को सही दृष्टि से देख पाएंगे। श्रीमद् भागवत वो ऐनक है, वो दिव्य दृष्टि है, जिसके होने से हम हर चीज को सही तरह से देख पाएंगे। शास्त्र चक्षु कहते हैं इसे, दिव्य चक्षु, प्रेम चक्षु। ऐसे शास्त्र चक्षु के द्वारा, भागवत के चक्षु के द्वारा सब कुछ ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ता है, हर चीज को सही तरह से हम समझ सकते हैं। यहां तक कि यदि हमें अन्य शास्त्र भी पढ़ने हैं, जैसे उपनिषद हैं, वेद हैं, महाभारत आदि है, तो भागवत के दृष्टिकोण से यदि हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ जो है कुछ अलग ही निराला ही आएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो वेदों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, महाभारत आदि भी पढ़ते हैं, परंतु उनका निष्कर्ष कुछ और ही निकलता है। जब भीष्म देव के बारे में वो पढ़ते हैं तो विरला ही ऐसे कोई सुनने में आता है जब भीष्म देव का गुणगान होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। बातों बातों में ये बात आ जाती होगी, परंतु भीष्म देव के शुद्ध भक्त होने की बात के ऊपर इतना जोर नहीं लगाया जाता, क्योंकि अन्य ग्रंथों में, यहां तक कि महाभारत में भी, व्यास देव जी की इच्छा थी कि तरह तरह के लोगों को वो आकर्षित करे, विशेष करके जो सकाम कर्मी हैं उनको भी। इसलिए उन्होंने साधारण धर्म की व्याख्या बड़ी मात्रा में की है महाभारत में। हालांकि भगवान की भक्ति का वर्णन और भक्तों का वर्णन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वर्णन भी विस्तार में पाया जाता है, परंतु बात यह है कि महाभारत में इतने अन्य विषय हैं और इतना विशाल ग्रंथ है ये, और इतनी रोमांचक घटनाएं एक के बाद एक पढ़ने में आती हैं कि जो पाठ करने वाला होता है या श्रवण करने वाला होता है उसका ध्यान अधिकतर इन अन्य विषयों में चले जाता है। जो भी तरह तरह के राजनीति है और फिर युद्ध का वर्णन है, अर्थव्यवस्था है और कितने सारे अन्य कहानियां हैं, इनमें लोगों का ध्यान चले जाता है। अब लोग महाभारत के ऊपर भी कितने सारे नाटक आदि लिखते हैं और समाज में पिछले 100-200 सालों में अनेक ऐसे नाटक हुए भी होंगे, परंतु विरला ही ऐसे कोई नाटक या ग्रंथ या उपन्यास जो महाभारत पर आधारित है ये भक्ति को प्राधान्य देता है। प्राय नहीं देते हैं, प्राधान्य देते हैं तो ये सब मनुष्यों के बीच में जो भावनाएं हैं, उनके जो झगड़े होते हैं, जो प्रेम होता है, उनके जो संबंध हैं, जो राजनीति है इत्यादि, इन सब चीजों के ऊपर अधिक जोर दिया जाता है। परंतु वास्तव में जब हम भागवत को पढ़ते हैं और फिर भीष्म देव जैसे महान भक्तों के चरित्र को पढ़ते हैं, महाभारत में भी क्यों ना हो, तो हमारा दृष्टिकोण ही कुछ अलग सा हो जाता है अन्य व्यक्तियों की तुलना में। महाभारत के बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक है जो महाभारत में ही आता है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यद इहास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न त्वत्क्वचित्। इसका मतलब है कि इस ग्रंथ में, इस महाभारत में, धर्मे च अर्थे च कामे च, धर्म अर्थ काम, और मोक्षे च मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का वर्णन है। बल्कि महाभारत में इन चार चीजों के ऊपर जोर दिया गया है। इनको पुरुषार्थ कहते हैं साधारण धर्म के दृष्टिकोण से। पुरुषार्थ अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य। तो साधारण व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे ही रहते हैं। तो यहां जो धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है उसका क्या तात्पर्य है? ये धर्म साधारण धर्म को संकेत करता है। वैसे श्रीमद् भागवत का धर्म साधारण धर्म नहीं है, वो है भागवत धर्म, सर्वोच्च धर्म, जिस धर्म का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये जो माम एकम शरणम व्रज है कि एकमात्र मेरे शरण में आओ हे अर्जुन, ये भागवत धर्म है। शरणागति और भक्त भक्ति का धर्म ही सर्वोच्च धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वास्तविक धर्म है। इसे भागवत धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं। अन्य जितने भी धर्म हैं, भले वो वेदों में भी क्यों ना हो, अधिकतर जो कर्मकांड आदि है उसे साधारण धर्म कहते हैं। धर्म अवश्य है क्योंकि इनका वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है, और शास्त्र ये तो भगवान की वाणी है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इसलिए ये भी धर्म है, परंतु साधारण धर्म है, निम्न श्रेणी का धर्म है। जब व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो उसे ये श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त करना चाहिए। तो साधारण व्यक्ति ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे हैं, तो ऐसे साधारण धर्म का पालन क्यों करते हैं लोग? अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ अर्थात धन। धन की प्राप्ति क्यों करते हैं? काम के लिए, क्योंकि अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। धन एक वाहन होता है इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। धन के द्वारा हम बहुत भोग कर सकते हैं संसार का, फिर अंततः जब हम ऊब जाते हैं अनेक जन्मों के बाद कर्मकांड के पद्धति को करते 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 लाखों लाखों जन्मों के बाद विरला ही कोई ऐसे व्यक्ति होगा जिसे ये साक्षात्कार हो जाएगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, क्यों अपना समय व्यर्थ गवा रहा हूं, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए। फिर वो ज्ञान कांड के स्तर में पहुंच जाता है और मोक्ष की अभिलाषा करता है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के उपदेशों के आधार पर बतलाया है कि इन चार पुरुषार्थों के अतिरिक्त और इनसे श्रेष्ठ एक पांचवा पुरुषार्थ है, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, और वो है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति भी अवश्य है महाभारत में, परंतु व्यास देव का उद्देश्य था उन लोगों को आकर्षित करना, विशेष करके जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित हैं। इसलिए यहां इस श्लोक में कहा गया है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। और फिर आगे कहा गया है, बहुत सुंदर बात है महाभारत के बारे में, यद इहास्ति तद अन्यत्र, यद इह अस्ति। इसमें यह अर्थात महाभारत में जो पाया जाता है तद अन्यत्र, आप दूसरे शास्त्र में भी पा सकते हैं, परंतु यन न इहास्ति न तत् क्वचित, जो आप महाभारत में नहीं पाएंगे वो कहीं भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, बहुत गहरी बात है। हम दोबारा कहते हैं, जो महाभारत में पाया जाता है वो अन्य शास्त्रों में भी पाया जाता है, परंतु जो महाभारत में नहीं पाया जाता है वो दूसरी जगह कहीं नहीं पाया जाता है। दूसरे शब्दों में महाभारत के अंदर सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी है और भक्ति भी है। परंतु साधारण व्यक्ति जब महाभारत को पढ़ता है तो उसे भक्ति के प्राधान्य का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही पड़ा रहता है। परंतु श्रीमद् भागवत पढ़ने वाले व्यक्ति जब महाभारत को पढ़ते हैं तो उनको भक्ति का सिद्धांत निकल आता है, दिखाई पड़ता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। चाहे वेदों में हो, रामायण में हो, पुराणों में हो, महाभारत में हो, आदाव अर्थात शुरुआत में, अंते अर्थात अंत में, मध्य बीच में, हरि सर्वत्र गीयते। समस्त शास्त्रों में, जितने भी वेद शास्त्र हैं, उन सब में उद्देश्य केवल श्री कृष्ण को प्रकट कराना है, परंतु लोगों का सही दृष्टिकोण न होने के कारण श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को नहीं जानने के कारण अलग अलग ग्रंथों से वो अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं और भक्ति का प्राधान्य नहीं समझते हैं। वैसे जब हम महाभारत गहराई से पढ़ते हैं तो कितने बार, एक बार नहीं अनगिनत बार भगवान श्री कृष्ण को भगवान कह के संबोधित किया गया है, अनगिनत बार। और भीष्म देव जब भगवान की स्तुति करते हैं इतना स्पष्ट होता है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और अन्य जो बड़े बड़े भक्त भगवान के हैं जैसे पांडव हैं, वो भगवान की स्तुति करते हैं तो भक्ति इतना उभर आता है, भक्ति ही भक्ति दिखाई पड़ती है। जिसके आंखों में भक्ति है वो सब जगह भक्ति ही देखता है। और ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। यदि हम चश्मा पहन रहे हैं और कांच में कुछ लाल कागज लगाया हुआ है तो हमें सब कुछ लाल दिखाई पड़ता है। हमारे दृष्टि यदि भौतिक इच्छाओं से युक्त हो, हमारे हृदय में बहुत भौतिक कामनाएं हो, तो हम श्रीमद् भागवत भी यदि पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें भक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी। परंतु कोई ना कोई हम भौतिक कामना की बातें वहां करेंगे, फिर भगवान श्री कृष्ण की निंदा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की 16,108 रानियों से विवाह किया। तो ये सारी बातें हम श्रीमद् भागवत में भी देखना शुरू करेंगे, ये न जानते हुए कि गोपियां कौन हैं, द्वारका की पटरानियां कौन हैं, उनका स्थान क्या है, श्री कृष्ण के प्रति उनका संबंध क्या है। इसलिए सब कुछ दृष्टि पर निर्भर है और ये श्रीमद् भागवत हमें ये दिव्य भक्तिमय दृष्टि प्रदान करता है। ऐसे दृष्टि से फिर जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो सब जगह भक्ति ही भक्ति, बस भक्ति देखते हैं सब जगह। भीष्म देव को देखते हैं बस कितने महान भक्त हैं। और इसलिए भीष्म देव एक रहस्यमय पात्र है महाभारत के। वो विरुद्ध पक्ष में लड़ाई कर रहे थे, कौरवों के पक्ष में थे, कैसे बड़े भक्त हो सकते हैं, ऐसे लोगों के मन में विचार है। इसलिए उनके लिए भीष्म देव एक रहस्य है, विडंबना की बात है उनके लिए कि भीष्म देव का चरित्र कैसे है ये। तो साधारण दृष्टि से देखते हैं लोग भीष्म को, यहां तक कि श्री कृष्ण को भी। श्री कृष्ण के बारे में भी बहुत कहते हैं, इन्होंने बहुत राजनीति की, इन्होंने ऐसे किया और वैसे किए, बहुत निंदा करते हैं लोग, क्योंकि श्री कृष्ण का स्थान ही नहीं जानते हैं। उसी तरह से भीष्म देव का स्थान भी नहीं जानते हैं और भीष्म देव की महिमा का गान करते भी हैं तो इसलिए कि वो कितने विद्वान थे, कितने शूरवीर थे, कैसे उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया क्षत्रिय होने के नाते, ये सब अवश्य प्रशंसनीय बातें हैं। परंतु सबसे बड़ी जो बात है भीष्म देव के बारे में वो ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 9वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ करने के पहले, जिसमें कि भीष्म देव के देह त्याग का वर्णन है, एक पृष्ठभूमि के रूप में भीष्म देव के चरित्र के बारे में पहले हम कुछ कहना चाहेंगे आज, फिर कल से 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। महाभारत में जैसे उनका वर्णन है संक्षेप में वो हम सुनाना चाहेंगे, ताकि उनके देह त्याग की जो लीला है, और ये लीला ही है, साधारण कर्म नहीं है, फिर हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वैसे बात जाती है ब्रह्मलोक तक, जहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा या ऊपर वाला लोक है, वहां पे एक बार महाभिषेक नाम के राजा थे। ब्रह्मा जी के दरबार में कोई अनुष्ठान हो रहा था, अनेक देव देवतागण देवियां भी आई हुई थी, वहां आए हुए थे। राजा महाभिषेक भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने अचानक गंगा जी को देखा, गंगा देवी को। गंगा देवी के सौंदर्य को देखकर उनका मन विचलित हो गया। गंगा देवी भी उनको देखकर थोड़ी बहुत आकर्षित हो गई। और ब्रह्मा जी ने ये देख लिया कि दोनों की दृष्टि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ ब्रह्मलोक में रह के आपके ऐसे कार्य उचित नहीं हैं, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप दोनों को पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा, जहाँ की सब ऐसे कार्य चलते हैं। आपको मनुष्य देह प्राप्त करना होगा। तो राजा महाभिषेक को पूछा गया कि कौन बनना चाहोगे, तो महाभिषेक ने देखा कि पृथ्वी में कौन ऐसे योग्य व्यक्ति है जिनके पुत्र वो बन सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि वैसे चंद्रवंश के एक बहुत महान राजा हैं जिनका नाम है प्रतीप। तो ऐसे राजा प्रतीप का पुत्र मैं बनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। साथ साथ में गंगा देवी को ब्रह्मा जी ने कहा कि वैसे अष्टवसु जो हैं स्वर्गलोक के देव, उन्हें श्राप मिला है वशिष्ठ मुनि द्वारा और वो आपके पुत्र बनेंगे। जब पहले 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी, फिर वो 7 तो चले आएंगे ऊपर, और जब 8वें पुत्र को आप सौंप दोगे तब आप मुक्त हो जाओगे। तो गंगा देवी को भी यहां पृथ्वी लोक में एक स्त्री का रूप धारण करना पड़ा, पृथ्वी के स्त्री का रूप, यद्यपि वो तो स्वर्ग लोक की देवी हैं। वैसे महाराज प्रतीप ये चंद्रवंश में थे। चंद्रवंश और सूर्यवंश क्षत्रियों के 2 वंश हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है। चंद्रवंश में श्री कृष्ण भी प्रकट हुए, सूर्यवंश में श्री राम प्रकट हुए। तो चंद्रवंश में अनेक बड़े बड़े राजा हुए, जैसे राजा ययाति, राजा पुरु, दुष्यंत, भरत इत्यादि। फिर राजा प्रतीप के पुत्र हुए शांतनु। शांतनु राजा वास्तव में वही राजा महाभिषेक थे। तो हुआ ये कि एक बार चलते जा रहे थे तो उन्होंने गंगा जी का दर्शन किया। उस समय उनको पता नहीं था कि ये गंगा देवी है। तो गंगा देवी के सौंदर्य से आकर्षित होकर जाके विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा देवी ने स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त रखी राजा शांतनु के सामने। वो शर्त ये था कि जैसे आप मेरे साथ रहोगे, मैं जो भी कुछ करूंगी उस काम को करने में आप मुझे मना नहीं करोगे, पहली बात। और दूसरी बात, कभी भी कठोर वचन मुझसे आप नहीं कहोगे। अब कौन सी शादी ऐसे टिक सकती है पता नहीं हमें। अब गृहस्थ जीवन का हमें तो अनुभव नहीं है, परंतु साधारण दृष्टि से हम जानते हैं कि स्वर्ग के विवाह भी ऐसे नहीं होते होंगे। तो ऐसे शर्त रख दिए गंगा देवी ने। परंतु देखिए, पुरुष स्त्री का आकर्षण होता ही ऐसे है कि राजा शांतनु ने एक क्षण भी नहीं सोचा, तुरंत हाँ कह दिया। ये भी नहीं सोचा कि क्या ये संभव है, नहीं, क्योंकि इतने आकर्षित हो गए थे तो तुरंत हाँ कह दिया। तो गंगा देवी के साथ रहने लगे। अब उधर दूसरी जगह है, एक और लीला हुई हो रही थी। राज जो वशिष्ठ मुनि थे अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे, अपने कार्यों में लगे हुए थे। उनके पास एक सुरभि गाय थी, नंदिनी, और ये गाय प्रचुर मात्रा में दूध प्रदान करती थी। केवल दूध ही नहीं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने में समर्थ थी। कामधेनु सुरभि गाय। वैसे विश्वामित्र मुनि ने भी एक बार ऐसे गलत काम किया था, इस गाय को छीनने का प्रयास किया था। तो खैर, ये अष्टवसु वहां से गुजर रहे थे। देवतागण अनेक वर्ग के होते हैं, जैसे आदित्य हैं, द्वादश आदित्य, आदित्य अर्थात अदिति और कश्यप के पुत्र, जैसे इंद्र, विवस्वान इत्यादि। वामन देव भी, जो स्वयं भगवान हैं, वो भी अदिति के पुत्र हैं, वो भी आदित्य कहलाते हैं। तो आदित्य हैं, साथ साथ रुद्र हैं, 11 है, उसके बाद में वसु हैं, ऐसे तरह तरह के और देवता हैं देवलोक में। तो उनमें से एक वर्ग है वसुओं का, 8 वसु हैं। तो ये 8 वसु अपने अपने पत्नियों को लेकर इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। तब देव नाम के वसु, जो 8वें वसु थे, उनके पत्नी ने इस गाय को देखा और सोचा कि मुझे ये गाय चाहिए। जैसे सीता देवी ने एक बार हिरण को देखा था, मुझे हिरण चाहिए, और देखिए क्या हो गया। तो यहां भी उसने कहा, मुझे ये गाय चाहिए, अपने पति से कहा। अब पति कैसे इनकार कर सकते हैं? तो पति ने कहा, ठीक है, हम करेंगे। तो सारे भाइयों ने मिलकर उस गाय का अपहरण कर लिया, जबरदस्ती हरण कर लिया। वशिष्ठ मुनि को आया बड़ा क्रोध, स्वाभाविक है। तो उन्होंने श्राप दे दिया 8 वसुओं को, कहा कि आपको यहां मनुष्य बन के आना होगा, पृथ्वी लोक में आपको जन्म लेना होगा। तब वसुओं के होश ठिकाने आ गए। उन्होंने सोचा, अरे हमने कितनी बड़ी गलती कर ली, क्षमा याचना करने लगे वशिष्ठ मुनि के पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वैसे आप मनुष्य देह प्राप्त करोगे, लेकिन आप जल्दी ही वापस चले आओगे। गंगा जी का पुत्र आपको, गंगा देवी का पुत्र बनना, के पुत्र बनने होंगे आपको, और थोड़ी देर बाद फिर आप चले आओगे। और क्षमा याचना जब करते रहे, तो उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे ही आपका जन्म होगा वैसे ही आपकी मृत्यु होगी, इसलिए आपको अधिक समय रहना भी नहीं पड़ेगा वहां। आप में से 7 जो हैं वो तुरंत अपने देवलोक में चले जाएंगे, परंतु आप में से जो 8वें हैं देव, जिन्होंने वास्तव में मेरी सुरभि गाय का भरण किया अपने हाथों से, उनको अधिक दंड प्राप्त होगा, उनको आजीवन वहां रहना होगा और स्त्री संभोग का सुख नहीं मिलेगा। बहुत लंबी आयु होगी, लेकिन वो बहुत शूरवीर और बहुत बड़ा विद्वान होगा। तो ऐसे कह के वशिष्ठ मुनि ने उनको भेज दिया। अब ऐसे भविष्यवाणी हुई, सब उनको श्राप, 8ों को ऐसे श्राप मिल गया। फिर गंगा देवी राजा शांतनु के साथ में रह रही थी। थोड़े समय के बाद पहला पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, गंगा देवी ने इस पुत्र को लिया, गंगा नदी में गई और जल में बच्चे को डाल दिया। और राजा शांतनु देखते रह गए, हैरान हो गए कि अरे ये क्या कर रही है मेरी पत्नी। लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उनको याद था कि मैंने वचन दिया है, ये गंगा देवी का शर्त था। तो सोचा, ठहर ठीक है, अगली बार शायद ऐसे नहीं करेगी। लेकिन दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी गंगा देवी ने ठीक ऐसे ही किया, बड़े कठिनाई से अपने आप को रोक दिया। राजा शांतनु ने कुछ कहा नहीं, बहुत क्रोधित होते जा रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूर थे, कुछ बोल नहीं पाए। ऐसे तीसरा बच्चे के साथ भी हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, 7 बार ऐसे हुआ। तब हम समझ सकते हैं कि महाराज शांतनु को चुप रहने के लिए कितना कष्ट हुआ होगा, फिर भी वो रह गए। लेकिन आठवीं बार जब बच्चा हुआ और इस बच्चे को भी नदी में डालने जा रही थी गंगा देवी, तो इस बार राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। बहुत आग बबूले होकर आए गंगा देवी के सामने। अरे क्यूर क्रूर स्त्री, क्या कर रही हो तुम? अपने ही बच्चों की हत्या करती हो? किस तरह की चुड़ैल हो तुम? ये सब क्या काम कर रही हो? ऐसे बहुत भला बुरा कह दिया। स्वाभाविक है, कोई माँ इस तरह से अपने बच्चों की हत्या करती रहे जानबूझकर तो पिता तो नाराज होंगे ही। तो शांतनु राजा अपने क्रोध को रोक नहीं पाए, और जैसे ही ये हुआ तो गंगा देवी ने कहा कि आपने अपने वचन को तोड़ दिया है, तो ये लीजिए, ये बच्चा आप ले लीजिए, मैं अभी अदृश्य हो रहा हूँ, आपके आपका संग मैं नहीं कर पाऊंगी, आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं स्वयं गंगा देवी हूँ वास्तव में। तब राजा शांतनु को बड़ा पछतावा हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया, परंतु गंगा देवी सुन नहीं रही थी। तो राजा शांतनु ने कहा कि ठीक है, तो कम से कम इस बच्चे को तो ले लो वापस और उसे स्वर्ग में ही बड़ा कर लो। तो गंगा देवी ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके स्वर्गलोक में ले गई। वहाँ पे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा, अच्छा शिक्षण प्रदान करवाया वशिष्ठ मुनि के द्वारा, सारे शास्त्र आदि का ज्ञान उनको हुआ। परशुराम से उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या अर्थात धनुर्विद्या आदि सीख ली। तो ऐसे बहुत थोड़े समय में ही वो हर क्षेत्र में बड़े प्रवीण हो गए, बहुत शूरवीर आदि बने, परंतु पृथ्वी लोक में दिखाई नहीं पड़ रहे थे। एक बार राजा शांतनु सैर के लिए यूं ही गए निकले, गंगा के तट पे आए तो उन्होंने बहुत अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था कि गंगा जी के जल का जो प्रवाह है, जो साधारण तौर से बहुत तीव्र होता है, अब पूरी तरह से रुक गया था और बल्कि थोड़ा उल्टा भी बह रहा था। तो राजा शांतनु ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। कौन है ऐसे व्यक्ति जिसने गंगा जी के जल के प्रवाह को रोक लिया है, और केवल तीरों से एक बांध बना दिया था किसी ने, जिसके कारण पानी भी रुक गया था। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए राजा शांतनु, इधर उधर देखा और वहां सामने एक नवयुवक खड़ा हुआ था। अब उन्हें संशय हुआ कि शायद ये तो मेरे पुत्र हो सकते हैं, परंतु वो लड़का जो है, वो युवक जो है, वो अदृश्य हो गया। तब गंगा जी से प्रार्थना की शांतनु महाराज ने, गंगा देवी प्रकट हुई और उस नवयुवक को लेकर आई और कहने लगी कि हे राजन, यही आपके पुत्र हैं, आपका आठवां पुत्र है ये, इसका नाम है देवव्रत। अब पूरे 32 साल बीत चुके थे, तो भीष्म देव 32 साल के थे और बड़े आनंद से राजा शांतनु देवव्रत को वापस ले गए अपने घर में। देवव्रत राजकुमार हो गए और युवराज, और सभी सारी प्रजा भीष्म देव से बहुत प्यार करती थी, बहुत आदर्श युवराज थे वो। परंतु दैव से, भगवान की योजना से हुआ ये कि एक बार जब राजा शांतनु कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने और एक सुंदर महिला को देखा जिसका नाम था सत्यवती। और सत्यवती के पिता का नाम था उपरिचर वसु, और सत्यवती का भी इतिहास है कि वो नौका चलाती थी, अपने पिता की सहायता करती थी और ऐसे उनका जीवन यापन होता था। और एक बार वो पराशर मुनि को नदी पार करा रही थी, जबकि पराशर मुनि आए थे वहां पर। पराशर मुनि ने उनके गर्भ में व्यासदेव जी को उत्पन्न कराया एक द्वीप में, इसलिए व्यासदेव जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण क्योंकि वो सांवले रंग के थे, कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला, द्वैपायन का मतलब है जो द्वीप के ऊपर जिनका जन्म हुआ है, क्योंकि वहां पराशर मुनि ने एक द्वीप ही बना लिया, एक कोहरा भी बना लिया था, तो इसलिए कृष्ण द्वैपायन। और व्यास उनका नाम है क्योंकि उन्होंने सारे वेदों का संपादन किया, तो व्यास शब्द का अर्थ है संपादन, संपादक। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास वास्तव में पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती तो बहुत घबरा गई, तो पराशर मुनि ने वचन दिया कि तुम कन्या ही रहोगी, तुम चिंता नहीं करना, और ये पुत्र तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। ये कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो पराशर मुनि थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, आत्म साक्षात्कारी ऋषि थे, और जो उनकी संतान हुए वो तो व्यासदेव जी थे जो कि स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। तो इस संसार के साधारण अनैतिक कार्यों से इस कार्य की तुलना नहीं करनी चाहिए, इसलिए सिद्धांतों को जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ऐसे गलत निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। साधारण अनैतिक संबंधों से कहीं व्यासदेव जैसे पुत्र कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। साधारण अनैतिक संबंध से या तथाकथित नैतिक संबंध से भी उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होते हैं वो आजकल के हिसाब से देखा जाए तो भगवद गीता के शब्दों में वर्ण संकर होते हैं, अवांछित होते हैं। तो खैर, व्यासदेव जी का जन्म तो हो गया, उधर सत्यवती देवी वहीं पर रहीं। एक दिन राजा शांतनु ने सत्यवती को देखा, पुनः आकर्षित हो गए, विवाह करना चाहा, और सत्यवती देवी के पिता उपरिचर वसु के पास गए, और उपरिचर वसु ने कहा, तो हम तो साधारण व्यक्ति हैं, आप तो विश्व सम्राट हैं, आप हमारी कन्या से विवाह करेंगे, ये कैसे संभव है? तो राजा ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि आपकी बेटी वो तो महारानी हो जाएंगी, विश्व की रानी, महारानी, तो पूरा ख्याल हम रखेंगे, इसलिए हम आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। परंतु वो माने नहीं बात, वो कहने लगे कि वैसे मैं केवल एक शर्त पे तैयार हो जाऊंगा, और वो शर्त ये है कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा आपके द्वारा, वही आपके बाद राजा बनेगा, क्या कबूल है? तो हैरान हो गए इस बात को सुनकर राजा शांतनु। वो सोचने लगे, युवराज तो भीष्म है या देवव्रत है, अब देवव्रत को कैसे के प्रति ऐसे अन्याय में कैसे कर सकता हूं? तो उन्होंने केवल सर नीचे झुकाया, कहा कि यह संभव नहीं है मेरे लिए, और फिर वो अपने महल में चले गए। परंतु उस समय से जो मोह राजा शांतनु के हृदय में छा गया था सत्यवती देवी के प्रति आकर्षित होने के कारण, वो हृदय से नहीं जा रहा था। इस संसार में ऐसे पुरुष स्त्री के बीच में आकर्षण बहुत गहरा होता है, बहुत गहरी गांठ होती है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और यहां तक कि कभी कभी अक्सर बल्कि व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो राजा शांतनु बहुत बेचैन से थे, उदास से थे, उनके मंत्री लोग भी देख रहे थे कि क्या बात है, राजा कुछ राजनीति के कार्यों में शामिल नहीं हो रहे हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे हैं। देवव्रत ने भी देखा, मंत्रियों से पूछताछ की कि क्या समस्या है, तब उनके सारथी ने, राजा शांतनु के सारथी ने उनको बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसी बात हुई, तो भीष्म देव तुरंत चले गए उपरिचर वसु के पास और कहने लगे कि मैं आपको वायदा देता हूं कि आपके बेटी का पुत्र ही मेरे पिता के बाद में राजा बनेगा, मैं राज सिंहासन को के अधिकार को त्याग देता हूं, मैं वचन लेता हूं कि मैं उस राज सिंहासन के ऊपर बैठूंगा नहीं। तो उपरिचर वसु बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे राजकुमार, आपने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है, कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसे बात नहीं कह सकता। लोग बहुत आसक्त होते हैं राजगद्दी से और आप यूं ही बस त्याग रहे हो राजगद्दी को, बहुत प्रशंसनीय बात है, बहुत अद्भुत है, आप बहुत विशेष हैं हे राजकुमार जी। परंतु और एक संशय मेरा है, और मेरा संशय ये है कि आप भी यदि राजगद्दी को त्याग दोगे, यदि आपके पुत्र आगे चल के अपना हक जमा करने का प्रयास करेंगे कि मैं राजा बनना चाहता हूं, तब क्या होगा? तो बिना हिचकिचाए हुए देवव्रत ने उस समय व्रत लिया कि मैं व्रत लेता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, फिर मेरे पुत्र होने की कोई संभावना है ही नहीं, और साथ साथ जो भी राजगद्दी पे बैठेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा, मैं उस राजगद्दी पे मेरे पिता को ही देखूंगा और ऐसे समझ के ही मैं उस व्यक्ति की रक्षा करूंगा। उपरिचर वसु कहने लगे, साधु साधु, ऐसी बात आज तक उन्होंने सुनी नहीं थी कि ऐसे भी व्यक्ति कोई व्रत ले सकता है। और जैसे ही देवव्रत ने ऐसे व्रत लिया तो देव लोक से भी साधु साधु कह के पुकार आए, फूलों की वृष्टि देवताओं ने की, और उस समय के बाद देवव्रत का नाम रखा गया भीष्म, जो कि बहुत भीषण व्रत धारण करने वाले हैं, ऐसे व्रत को कोई पहले नहीं कर चुका था। तो खैर, जब वापस आए तो वहां राजा शांतनु को उन्होंने बताया। राजा शांतनु ने कहा कि कैसे हो सकता है, परंतु उनकी बात नहीं मानी भीष्म ने। मंत्रियों ने भी कहा कि हे राजन, हे राजकुमार जी, यदि कोई राजकुमार यहां जो बैठे वो योग्य न हो राज्य को चलाने के लिए, तब क्या होगा? तो भीष्म देव ने कहा, मैं उसकी सहायता करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, यदि वो अयोग्य हुआ भी किसी कारण से तो मेरे होते हुए कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए मैं इस राजगद्दी की रक्षा करूंगा। तो भीष्म देव ने तीन व्रत लिए थे, तीन वचन दिए थे। पहला वचन ये था कि मैं राज सिंहासन के बैठने के का जो अधिकार है उसको त्यागता हूं, दूसरी बात मैं ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, संतान की उत्पत्ति नहीं करूंगा, तीसरी बात कि जो भी राज सिंहासन पर बैठे मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो राजा शांतनु, वैसे वो इतने प्रभावित थे सत्यवती देवी से, हालांकि उनको बुरा लगा कि मेरे पुत्र को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा केवल मेरे लिए, अब पिता ऐसे कुछ त्याग करे अपने बेटे के लिए वो तो सोच भी सकते हैं, परंतु यहां कुछ उल्टा ही हो गया। फिर भी देखिए, संसार के आकर्षण इतना गहरा होता है, इतना तीव्र होता है, भयानक होता है कि व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है, अपने पुत्र को उसके भविष्य का जो जितने भी अधिकार हैं उनसे भी वो वांछित रख सकता है। तो फिर भी हमें जानना चाहिए कि राजा शांतनु भी कोई साधारण राजा नहीं है, ये स्वयं राजा महाभिषेक थे, ब्रह्मा जी के द्वारा जो श्राप किया था उसके कारण वो आए थे। अंततः हमें जानना चाहिए कि ये सारी चीजें भगवान की योजना से हो रही थी, क्योंकि भगवान भी भीष्म देव के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराना चाहते थे। देखिए, भगवान के कार्यों को लीला कहते हैं। लीला में और हमारे साधारण कर्मों में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हम जो कर्म करते हैं उनके फलों से हम बद्ध हो जाते हैं और इसलिए पुनर्जन्म लेने में बाध्य भी हो जाते हैं। हमारे जैसे तीन गुणों के अधीन हमारे जो स्वभाव है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं और फिर वैसे ही फल भी प्राप्त होते हैं। कहाँ हमारा जन्म होगा हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। एक बार हमने कर्म कर लिए फिर हमारा पुनर्जन्म निश्चित है और वो हमारे हाथ में नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कथित जन्म, उनका प्राकट्य ऐसे नहीं होता है। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और उनके कार्य दिव्य ही होते हैं, जैसे कि वो भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि हे अर्जुन, जो भली भांति जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं, ये भौतिक नहीं है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं यहाँ धरातल में आके या कहीं भी भौतिक सृष्टि में, आध्यात्मिक जगत में भी, भगवान के जितने भी कार्य हैं वो लीला हैं और भगवान उनसे बंध नहीं जाते हैं। अपनी स्वेच्छा से भगवान अपने दिव्य आनंद की वृद्धि के लिए और अपने भक्तों के प्रेम की वृद्धि के लिए ऐसे कार्य करते हैं। तो लीला और साधारण कर्म, इनमें बहुत अंतर है। जब भगवान ऐसे लीला करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये एक प्रकार का नाटक है। जैसे जब हम कोई नाट्य लीला करते हैं तो अनेक लोग आके तरह तरह की भूमिकाएं निभाते हैं, कोई राजा बनता है, कोई रानी बनती है, कोई कुछ और। लेकिन जब नाटक समाप्त हो जाता है तो सब अपने अपने जीवन में वापस अपने घरों में चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं नाटक में राजा था या मैं रानी थी। परंतु भगवान की लीलाएं उनके धाम में निरंतर चलती हैं, शाश्वत रूप से चलती हैं। और कभी कभी उन लीलाओं को यहाँ भी भगवान प्रकट कराते हैं, जैसे कि उन्होंने वृंदावन में कराया, मथुरा में कराया, द्वारका में कराया। कोई ऐसे भी लीलाएं होते हैं भगवान के जो कि शायद वहां आध्यात्मिक जगत में न होती होंगी, परंतु यहां किसी विशेष कार्य को या उद्देश्य को संपन्न करने के लिए भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं। और जो भी नाटक होते हैं यहां पर, उनमें एक पात्र तो नहीं होता, अनेक पात्र होते हैं। तो भगवान की लीलाओं में भी अनेक पात्रों की आवश्यकता है जो कि तरह तरह की भूमिकाएं निभाएंगे, और एक दो नहीं, उनको अनेक चाहिए। तो ऐसे वो विशेष व्यक्तियों को चुनते हैं कि जो कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका उनकी लीला में निभा सके और भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सहायता कर सके, भगवान के सहायक बन सके। तो पांडव ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कुंती देवी, द्रौपदी देवी, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान की लीला में एक भूमिका निभा रहे हैं। भगवान की क्या इच्छा हो सकती है वो शायद वो जाने या न भी जाने, परंतु अपने हृदय से अपनी सेवा तो वो करते हैं भगवान के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमें जानना चाहिए कि कि भीष्म देव भी एक महत्वपूर्ण लीला कर रहे हैं या भगवान की लीला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो भीष्म देव की को ये कार्य करने के लिए कोई पृष्ठिका चाहिए, कोई इतिहास चाहिए, इसके लिए उनके पिता चाहिए और ऐसे श्राप देना, फिर अष्टवसु भी चाहिए। तो ये सारी भगवान की योजना है, भगवान निर्देशक है इस दिव्य नाटक के। इसलिए राजा शांत राज पराशर मुनि का ऐसे आकर्षित होना सत्यवती से, फिर राजा शांतनु का गंगा देवी से आकर्षित होना, बाद में सत्यवती देवी से आकर्षित होना, और फिर देव व्रत का इस प्रकार से भयंकर व्रत को स्वीकार करना, इन सब के द्वारा भगवान अपने ही लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। भगवान के क्या उद्देश्य होंगे वो भगवान ही जानते हैं, भगवान के भक्त अनुमान मात्र लगा सकते हैं। परंतु जैसे भीष्मदेव आगे भी कहने वाले हैं, इसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे कि भगवान क्यों अपने भिन्न भिन्न कार्यों को करते हैं इस धरातल में, उसे कोई भी नहीं समझ सकता है। भीष्मदेव स्वयं कहते हैं, यद्यपि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, देवतागण भी हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, फिर भी भगवान के कार्यों को समझ नहीं सकते हैं। नमे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिरी देवानां महर्षीणां च सर्वशः। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता के कि मैं तो सबको जानता हूं, परंतु जो देवतागण हैं, बड़े बड़े महर्षि हैं, वो मुझे नहीं जानते। मैं सबका आदि हूं, अहम आदिर ही देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। तो ऐसे हमें इन कार्यों को समझना चाहिए, अन्यथा हम केवल यही कहेंगे अरे इन्होंने ऐसे अनैतिक कार्य कैसे किया, इन्होंने भीष्म देव के प्रति अन्याय कैसे किया। ये सब भगवान की योजना थी और इसके द्वारा हमें बहुत उपदेश भी मिलते हैं। देखिए, भगवान एक कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, तो इस कार्य से यह भी हमें पता चलता है कि देखिए इस जगत में पुरुष स्त्री के आकर्षण के कारण क्या नहीं होता है, व्यक्ति क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने पुत्र के प्रति भी इतना बड़ा अन्याय करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा शांतनु ने अंततः स्वीकार कर लिया और फिर सत्यवती देवी आई, उनका विवाह हुआ। आगे चल के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब ये दो पुत्र वैसे भीष्म देव के संरक्षण में थे, भीष्म देव ने भी उनका ख्याल रखा, उनकी रक्षा की, अच्छी तरह से उनको सुशिक्षित बनाया, प्रशिक्षण दिलवाया हर क्षेत्र में, जैसे कि एक राजकुमार के लिए उचित है। परंतु एक बार हुआ ये कि चित्रांगद जब कहीं बाहर गए थे वन में, तो एक गंधर्व आए, जो गंधर्व लोक से आए थे, जिनका नाम भी चित्रांगद था। उन्होंने देखा कि मेरा ही नाम इनको कैसे है, तो दोनों में युद्ध हुआ और जो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद की मृत्यु हो गई। तब विचित्र वीर्य राजगद्दी पर बैठे राजा शांतनु के बाद। विचित्र वीर्य का भी देहांत थोड़े समय बाद हो गया और आगे अब बड़ी विडंबना हो गई। सत्यवती देवी सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, अब कैसे इनकी रक्षा की जाए। वैसे इसके पहले भीष्म देव सोच रहे थे कि दोनों का विवाह करना चाहिए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य का। तो एक स्वयंवर में गए थे जिसका आयोजन काशी राज ने किया था। उनकी तीन पुत्रियां थीं जिनके नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। वहां स्वयंवर में स्वयं भीष्म देव लड़े और तीनों कन्याओं को वो लेकर आए। उनका उद्देश्य था कि कि इनका विवाह वो विचित्र वीर्य और चित्रांगद से कराएंगे। परंतु हुआ ये कि जब अंबा देवी वहां पर आईं, तो अंबा ने कहा कि मैंने मेरा हृदय किसी दूसरे को दिया हुआ है, राजा शाल्व से मैं विवाह करना चाहती हूँ और वो भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, इसलिए आपको मुझे यहाँ ऐसे उठा के ले आना ठीक नहीं था। तो भीष्म देव ने कहा कि मैं ऐसा अन्याय नहीं करूँगा, तो आप अपने रास्ते में जा सकते हैं राजा शाल्व के पास। राजा शाल्व के पास जब अंबा चली गई, तो राजा शाल्व ने कहा कि तुम किसी दूसरे पुरुष के पास गई थी, मैं तुम्हें वापस स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने स्वयं देखा कि भीष्म देव ने अपने हाथों से तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें रथ में उठाया था, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो अंबा हैरान हो गई। शाल्व ने कहा तुम भीष्म देव के पास ही जाओ, भीष्म देव से ही विवाह करो। जब अंबा वापस भीष्म देव के पास गई, तो भीष्म देव ने कहा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो अंबा देवी ने बात नहीं मानी, तपस्या करने चली गई। वहां परशुराम जी के एक शिष्य मिले, उन्होंने कहा परशुराम जी से हम बात करते हैं। तो परशुराम जी को दया आई अंबा के ऊपर और उन्होंने कहा कि भीष्म तो मेरे शिष्य हैं, मैं बताऊंगा और मेरी बात को वो मानेगा, और यदि भीष्म ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं युद्ध करूंगा भीष्म से और परास्त कर दूंगा। तो भीष्म देव को बुलाया गया। भीष्म देव ने कहा कि मैं नहीं विवाह कर सकता है मुनिवर, क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया, मुझे करना है, मैं वचन को तोड़ नहीं सकता। तो परशुराम जी ने कहा कि तुम्हें करना होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैंने वचन दिया है इस महिला को। फिर एक नहीं मानी भीष्म देव ने, कहा कि फिर ठीक है युद्ध ही सही, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। 23 दिन लगातार भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। दोनों अस्त्र शस्त्र विद्या में, धनुर्विद्या में बहुत प्रवीण थे। यद्यपि भीष्म देव परशुराम से ही सीखे थे, फिर भी वो कोई कम नहीं थे। परशुराम जो हैं वो शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं भगवान कृष्ण के, दुष्ट दमन शक्ति प्रदान की है भगवान ने उनको। जैसे व्यास देव जी को शास्त्रों की रचना करने की शक्ति प्रदान की है, पृथु महाराज को प्रजापालन शक्ति प्रदान की, चतुष्कुमारों को ज्ञान शक्ति, नारद जी को भक्ति शक्ति, उसी प्रकार से परशुराम को दुष्ट दमन शक्ति प्रदान की हुई थी भगवान ने। परंतु भीष्म देव तो दुष्ट नहीं थे। अब दोनों के बीच में ऐसे युद्ध हुआ और आगे चल के फिर देवलोक से उनको एक विशेष अस्त्र मिला, पाशुपत अस्त्र, जो परशुराम के पास भी नहीं था। और ये अस्त्र जब देखा परशुराम ने, तो उन्होंने देखा कि अब तो मैं हार जाऊंगा। और भीष्म देव चलाने ही वाले थे इस अस्त्र को, जब आकाशवाणी आई कि भीष्म देव ऐसे अपने गुरु का अपमान ना करो, भले उन्होंने गलती की भी होगी लेकिन ऐसे अपमानित नहीं करना चाहिए। तो परशुराम जी से जब उन्होंने निवेदन किया, परशुराम जी ने कहा या तो मैं भीष्म को हराऊंगा या तो भीष्म को अपनी स्वेच्छा से निकलना होगा युद्ध में से, या तो मेरी बात माननी होगी और इस महिला से विवाह करना होगा। फिर आकाशवाणी को सम्मान देते हुए, अपने गुरु को भी सम्मान देते हुए भीष्म देव युद्ध से हट गए। 23 दिनों के बाद दोनों बिल्कुल बराबर के थे, भीष्म और परशुराम। फिर परशुराम ने अंबा से कहा कि क्षमा करना, मैं भी कुछ कर नहीं पाया, मेरे पास मेरे लिए जो संभव था मैंने प्रयत्न किया, परंतु इससे आगे मैं और कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी। तो अंबा और भी तपस्या करने बैठ गई और तपस्या के बाद अंततः उसे वरदान मिला, और वरदान ये था कि आगे चल के वो एक पुरुष बनेगी शिखंडी, और ये पुरुष आगे चल के भीष्म देव की हत्या का कारण हो जाएगा, क्योंकि अंबा के मन में इतनी घृणा थी या इतना क्रोध था भीष्म के प्रति, इन्होंने सोचा कि भीष्म के कारण मेरा सारा जीवन बिगड़ गया, इसलिए मैं भीष्म को मार के ही रहूंगी। उन्होंने अंबा ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि इस जन्म में नहीं हो सकता है तो कम से कम अगले जन्म में मैं भीष्म की हत्या करके ही रहूंगी। ऐसे ठान लिया था अंबा ने, और ऐसे कड़ी कड़ी तपस्या करने के बाद फिर अग्नि में प्रवेश कर लिया, और अगले जन्म में वो द्रुपद राजा के घर में जन्म ले ली उस महिला ने, अम्बा ने, परंतु एक बच्ची के रूप में जन्म हुआ, लड़की। तो द्रुपद राजा और उनकी पत्नी सोच रहे थे, और बहुत समय से प्रार्थना की थी उन्होंने, शिव जी की उपासना की थी कि हमें कोई संतान दीजिए, और अब शिव जी ने कहा था कि पुत्र होगा, तो अब हुई बच्ची। तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे है, परंतु राजा द्रुपद की पत्नी बहुत श्रद्धालु थी, उन्होंने कहा नहीं, शिव जी का आशीर्वाद कभी गलत नहीं साबित हो सकता, इसलिए यद्यपि ये लड़की है फिर भी ये लड़का होगा इसलिए लड़के की ही पोशाक पहनाएंगे, लड़के जैसे ही इसका इसका प्रशिक्षण होगा, और हम घोषणा भी सारे समाज के लिए करेंगे कि हमारे बच्चा जो है वो लड़का है। तो ऐसे ही घोषणा की गई, तो सभी ने सोचा कि राजा द्रुपद को एक पुत्र हुआ है, तो नाम था शिखंडी। और आगे चल के शिखंडी को फिर एक कहानी बहुत लंबी है, और सही समय पे आगे की बात आगे बताएंगे आपको, कुछ तो कल आने वाले दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए ना, अब सारी बात आज ही बता दें तो फिर कैसे चलेगा। तो खैर, शिखंडी का जन्म हुआ, और शिखंडी का जन्म क्यों हुआ, केवल भीष्मदेव की हत्या कराने के लिए। और आगे चल के शिखंडी के जीवन में कैसे क्या हुआ, ये हम आगे चल के भी सुनने वाले हैं। तो खैर, अंबा और शिखंडी की बात एक तरफ रह गई, दूसरी तरफ अब जो अंबा की जो दो बहनें थीं अंबिका और अंबालिका, उनका विवाह तो हो गया, परंतु जब चित्रांगद और विचित्रवीर ये दोनों का देहांत हो गया और संतान नहीं थे, तो सत्यवती देवी और परेशान हो गई, हैरान हो गए कि अब क्या किया जा सकता है। तो अपने पुत्र व्यास देव का स्मरण किया, जन्म लेने के बाद ही व्यास देव ने अपने माता को सांत्वना दी थी कि चिंता नहीं करना है माते, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा, जब भी मेरी आवश्यकता पड़े केवल मेरा स्मरण करना और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तो ऐसे जब विकट परिस्थिति निर्माण हो गई, तो सत्यवती रानी ने स्मरण किया अपने पुत्र व्यास देव का, और व्यास देव प्रकट हुए और फिर समस्या का वर्णन किया और कहा कि वंश को आगे बढ़ाना है तो तुम भी मेरे पुत्र हो, इसलिए वैदिक काल में ऐसे संभव हुआ करता था, परंतु कलयुग में यह वर्जित है। तो खैर, व्यास देव जी को उन्होंने आदेश दिया कि आप संतान की उत्पत्ति कराना अंबिका और अंबालिका से। तो इस प्रकार से अंबिका से जन्म लिया धृतराष्ट्र ने, अंबालिका से जन्म लिया पांडु ने, और तीसरी बार जब व्यास देव जी आना चाहते थे तो दोनों ही ने एक दासी को रख दिया, क्योंकि व्यास देव जी का वो भयानक रूप देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि व्यास देव जी तो जंगल से तपस्या करके आए थे, इसलिए एक दासी को रख दिया। और फिर वहां संतान की जो उत्पत्ति हुई उनका नाम था विदुर। तो ऐसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इनका जन्म हुआ। आगे चल के आपको तो पता ही है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए कौरव, पांडु के 5 पुत्र हुए पांडव, तो ये पीढ़ी आगे भी भीष्म देव के संरक्षण में रही। वैसे देखा जाए तो भीष्म देव के भाई हुए विचित्र वीर्य और चित्रंगदा, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि भीष्म देव उनके पिता तुल्य थे, आयु में अंतर भी उतना ही था। जब उनका जन्म हुआ था तो भीष्म देव की आयु भी काफी हो गई थी, वो वैसे उनके पिता के समान थे। तो यद्यपि वो भाई थे, पुत्र के समान थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि पांडव और कौरव एक ओर और भीष्म देव दूसरी ओर के बीच में ये तीसरी पीढ़ी थी, परंतु वास्तव में चौथी पीढ़ी के समान थी, क्योंकि जीवन की अवधि में इतनी आयु में इतना अंतर था। तो खैर, भीष्म देव सबका देखभाल करते रहे, अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया, पहले अपने पिता की सेवा के लिए, बाद में अपने भाइयों की सेवा के लिए, बाद में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की सेवा के लिए, उसके बाद में कुरु राजकुमारों के लिए। भीष्म देव का विवाह का सारा जीवन ऐसे ही सेवा में ही उन्होंने समर्पित किया। ये है भीष्म देव का त्याग। आने वाले दिनों में हम और भीष्म देव के बारे में सुनेंगे और उनकी जीवनी संक्षिप्त रूप में सुनने के बाद, और थोड़ी बातें बाकी हैं अभी तक, फिर हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब थोड़ी सूचनाएं होंगी और फिर हम हर दिन की तरह भजन गाएंगे चित्रों के साथ में।